ओम शांति। हम सभी मीठे बाबा के प्यारे बच्चे हैं। बाबा प्यार से समझाकर, शिक्षा देकर, पढ़ाकर हम आप सब बच्चों को आप समान बनाना चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। सियो बाप समान कर्मातीत बन जाएं और ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएं, क्योंकि हमें पहले घर चलकर फिर राजधानी में आना है। जो ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनेगा उसके साथ साथ राज्य करना है, तो कर्मातीत भी बनना है, सर्व गुण संपन्न भी बनना है। लेकिन ऐसा अनुभव कहता है और आप लोग का भी अनुभव होगा कि जब आत्मा इस पुरुषार्थ में बढ़ती है तो उसके सामने मुख्य विघ्न आते हैं, पुराने संस्कार, जो चाहते हुए भी करने नहीं देते। लक्ष्य बहुत ऊंचा लेते हैं कि करना है, पुरुषार्थ भी शुरू करते हैं, लेकिन पुराने संस्कार विघ्न डालना शुरू करते हैं, मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मणा में भी, संबंध संपर्क में भी। फिर आत्मा कभी तो विजय प्राप्त कर लेती है, कभी पुरुषार्थ हीन हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो पुराने संस्कारों को चेंज कर आत्मा अपना संस्कार बाप समान बना ले, शिव बाप समान और ब्रह्मा बाप समान, दोनों के संस्कार में अंतर है। शिव बाप समान निराकारी संस्कार है, एवर है, और ब्रह्मा बाप समान आत्मा बनती संपूर्ण जरूर है, लेकिन स्वरूप है, यवर नहीं है, सदा काल नहीं है, आधा कल्प के बाद गिरावट है, लेकिन शिव बाबा एवर प्योर है। इसलिए इस समय हम आत्मा कहते हैं शिव बाबा प्यार का सागर है, तो आत्मा मास्टर प्यार का सागर है, समानता लाती है। लेकिन जब आप आत्मा सतयुग में पहुंच जाएंगे तो मास्टर शब्द कट जाएगा, बचेगा प्यार स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, फिर स्वरूप बन जाएंगे। तो हमें दोनों बाप के समान संस्कार धारण करना है, अर्थात पुराने संस्कार को चेंज करके हमें नए संस्कार लाने हैं। तो पुराने संस्कार को चेंज करने के लिए कुछ बातें जो हम अपने पुरुषार्थ में लाए हैं और बाबा की मुरलियों से सुने हैं वो आपको बताते हैं। आप भी अभ्यास कर रहे होंगे, फिर भी एक दूसरे के आधार से आगे बढ़ने का चांस रहता है। तो पहली बात है कि आत्मा अपने और बाप के स्वरूप को यथार्थ पहचान कर स्मृति में रहना, अपने और बाप के स्वरूप को यथार्थ पहचान कर स्मृति में रहना। दूसरी बात है अनादि और आदि स्वरूप का अभ्यास करना। अनादि जब आत्मा निराकार स्वरूप में परम धाम में है तो कैसी है, और जब सतयुग में है तब कैसी है, उस स्वरूप का अभ्यास करना। तीसरी बात है दृढ़ संकल्प करना कि मुझे परिवर्तन करना ही है। दृढ़ता में भगवान की मदद है। चौथी बात सारे दिन में किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखना, सोमान में रहकर कर्म करना। पांचवी बात है अमृत बेला पावरफुल स्थिति का अनुभव करने का अटेंशन। छठी बात है ईश्वरीय नियम या मर्यादाओं पर अपने को पूरा चलाना। सातवीं बात है ईश्वरीय संग में आत्मा को सदा रखना, अर्थात निरंतर बाबा की याद बनी रहे। और आठवीं बात है अगर सारे दिन में कोई भूल हो गई, गलती हो गई ईश्वरीय नियम के विपरीत, संकल्प बोल कर्म कुछ हो गया, तो बाबा से सच्चे दिल से माफी मांग कर पुनः पुरुषार्थ में लग जाना। गलती होने पर पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं, पुरुषार्थ में रुकना नहीं। अगर कुछ हो जाता है तो रिलाइज करके बाबा से माफी मांगकर तुरंत पुरुषार्थ में लग जाओ तो थोड़े समय में फिर गैलप कर लोगे। अगर गलती हुई और आप रुक गए तो फिर चढ़ नहीं पाएंगे, फिर पुराने संस्कार पक्के हो जाएंगे। तो ये आठ बातें अगर हम अटेंशन में रखें तो संस्कार परिवर्तन सहज हो सकता है। पहली बात है अपने और बाप के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर स्मृति में रहना, अपने अर्थात आत्मा का रूप कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ और किसकी संतान हूँ, क्या बनने वाली हूँ, कौन हूँ अर्थात कितनी महान आत्मा हूँ, किसकी संतान हूँ और क्या बनने वाली हूँ, स्वयं की पहचान और बाप की यथार्थ पहचान। जो बाबा मुरली में कहता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे कोटि में को पहचानते, तो जो है अर्थात कितना महान है, जैसा है अर्थात बिंदु है, बिल्कुल स्टार मुआफिक अति सूक्ष्म है। इन दो बातों का ध्यान रखो तो आपका ओरिजिनल संस्कार इमर्ज रहेगा। जैसे कहानी बताते हैं, आप लोगों ने कोर्स किया है तो बताया गया होगा कि एक बार राजा अपने परिवार सहित एक जंगल में शिकार करने गया, तो परिवार को एक जगह बिठाकर राजा किसी शिकार के पीछे दौड़ा और काफी आगे राजा चला गया। सैनिक भी राजा के बचाव के कारण दौड़ते चले गए। इधर राजा का एक छोटा सा बच्चा था, वो खेल रहा था तो उसको भेड़िया ने उठा लिया। भेड़िया होता है जो थोड़ा टाइगर से छोटा होता है, वो उठाकर ले गया। लेकिन भेड़िया ने उस बच्चे को खाया नहीं, तो वो बच्चा उस भेड़िये के साथ पलने लगा और भेड़िये के साथ पलने से छोटा बच्चा तो था ही, भेड़िये के साथ रहते रहते उसके संस्कार जो हैं वो भेड़िया जैसा बन गया। वही खाना, उसी तरह से चलना, हरकत करना हो गया। तो राजा जब वापस आया, बच्चे को नहीं पाया तो राजमहल तो वापस आ गया। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद राजा फिर शिकार करने गया उसी जंगल में। तो राजा ने क्या देखा कि भेड़ियों के झुंड के बीच में एक मनुष्य है, क्योंकि उसका सारा संस्कार तो भेड़ियों जैसा हो गया लेकिन शरीर तो मनुष्य जैसा ही था ना, वो तो भेड़ियों जैसा नहीं हुआ। तो राजा ने भेड़ियों के बीच में मनुष्य को देखकर भेड़िया का पीछा करके उसको छुड़ा लिया। जब उसको छुड़ाया तो वो भेड़ियों जैसी तो हरकत करने लगा, लेकिन राजा ने देखा कि एक विशेष निशान था उसके बच्चे के शरीर पर, तो उस निशान को उसने उसके शरीर पर देखा राजा ने, तो राजा समझ गया हो ना हो ये मेरा ही बेटा है। फिर राजा उसको पकड़कर ले आए राजमहल में, उसको एक कमरे में बंद कर दिया। वो कमरे में भेड़ियों जैसी हरकत करता था, लेकिन उसको एक टीचर नियुक्त किया गया। राजा ने एक टीचर रखा उसको पढ़ाने के लिए, तो और कुछ टीचर नहीं पढ़ाता था, एक ही शब्द बोलता था कि तुम भेड़िया नहीं हो, राजा की संतान, राजकुमार हो, इस राज्य के होवनहार मालिक हो। यही पाठ वो कई बार उसको पढ़ाता था। तो वो थोड़ा उसके कान में बात पड़ती थी। पढ़ते पढ़ते वो जितना उस बात को सुनता गया, धीरे धीरे उसकी बुद्धि खुलने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि उसके समझ में आ गया कि मैं भेड़िया नहीं, राजकुमार हूं, होवनहार इस राज्य का मालिक हूं। तो उसके सब संस्कार चेंज हो करके राजकुमार के संस्कार इमर्ज हो गए। ऐसे आप अगर सारे दिन बार बार ये स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा हूँ, अति श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, भगवान ने मुझे अपने गोद का बच्चा बनाया है, विश्व का मालिक बनाने के लिए बनाया है, ये जितना आप इस स्मृति में आते जाएंगे तो पुराने जो देह के संस्कार हैं वो मर्ज होते जाएंगे, दबते जाएंगे और ये संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो जितने वो संस्कार मर्ज होंगे उतना आपकी बुद्धि में यह बात बैठने की ताकत आती जाएगी, बल आता जाएगा, समझ में बैठता जाएगा। अभी आपके पास नॉलेज होते हुए भी लेकिन क्यों नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं वो नशा चढ़ रहा है, क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि बार बार स्मृति में लाते नहीं है। एक बार स्मृति में सुबह मुरली सुनते समय लाए, फिर सारा दिन देह की स्मृति रहती है, संबंधों की रहती है, देह भान में रहकर कर्म करते हैं, कर्म कर्ता बनकर कर्म करते हैं, इसलिए पुराने संस्कार चेंज नहीं हो रहे। तो पुराने संस्कारों को चेंज करने के लिए स्वयं और बाप की स्मृति को बार 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 इमर्श करते रहो। तो वैसे भी कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। किस आधार से? आप बार बार सोचोगे तो जो चीज बार बार और जितनी गहराई से सोचते हैं तो वो वृत्ति बन जाती है, अंदर बैठ जाता है। और वृत्ति बनना से फिर स्थिति बनती अर्थात स्वरूप हो जाते। स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से स्थिति, स्थिति सो स्वरूप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन हमारी स्मृति नहीं चलती है और वो फिर वृत्ति नहीं बनती है। जिससे वृत्ति पृथ्वी से वायुमंडल बने, आप जहां खड़े हो वहां भगवान के साथ का वायुमंडल अनुभव हो, जैसे दादियों के पास जाओ या कोई योग युक्त आत्मा हो तो वहां पहुंचो तो उनको देखते ही ऑटोमेटिक बाबा की याद आती है, वायुमंडल बना होता है, वृत्ति से वायुमंडल होता है। तो वो चीज न होने के कारण, सारा दिन इसका भान होने के कारण संस्कार बदल नहीं पा रहे, पुराने संस्कार ही रह जाते हैं। तो यह बात थोड़ा अटेंशन दे दें तो संस्कार परिवर्तन मुश्किल नहीं है। दूसरी बात है, अनादि और आदि स्वरूप का अभ्यास। हम योग में बैठते हैं, रूरिहान बाबा से करते हैं, सुदर्शन चक्कर घुमाते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे आपके संस्कार नहीं बदलेंगे। इससे संस्कार को बदलने की मदद मिलेगी लेकिन बदलेंगे नहीं, अंतर है। संस्कार बदलने में हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी, लेकिन संस्कार चेंज नहीं होंगे। जैसे हम ज्ञान का मनन करके योग लगाते हैं, संकल्प चलाकर सब तरफ से संकल्प हटाते हटाते जब एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, आप आत्मा और बाप, तब विकर्म विनाश होता है। तो संकल्प चलाना विकर्म विनाश करने में मदद देगा, लेकिन संकल्प विकर्म विनाश कर दे नहीं होगा। ऐसे आपको ये मदद मिल जाती है जरूर, लेकिन आपका संस्कार परिवर्तन हो उसके लिए जब तक आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार को अनुभव नहीं करेगी तब तक पुराना जाएगा ही नहीं। जब आप ओरिजिनल निराकारी स्वरूप में निराकार बाप के पास आप बैठो, जब आप परम धाम में थे, बाबा के पास थे, तो आप आत्मा कैसी थी? कितनी आत्मा में चमक थी? बाप समान थी, मास्टर थी, मास्टर भगवान थी। बैठ कर देखो, जब उस स्थिति का अनुभव कर लिया, फिर ये वाणी वाली स्थिति स्वतः हट जाएगी, फिर ये संस्कार स्वतः चेंज हो जाएगी। तो जब आत्मा परम धाम में थी, आप आत्मा ही थी, अपने घर में, अपने बाप के पास, अपने स्वरूप में टिक करके बैठो, इमर्ज करो कि मैं आत्मा जब यहां थी तो कैसी थी, क्या क्या मुझ आत्मा में विशेषता थी। वहां बैठकर संकल्प चलाओगे तो वो विशेषता आप में समा जाएगी। अगर वो संकल्प साकार में रहकर चलाओगे तो वो आत्मा आत्मा में विशेषता नहीं आएगी, लेकिन वहां बैठकर संकल्प चलाया तो वो स्वरूप बन जाएगी। तो जब आप आत्मा अनादि स्वरूप में थे तब कैसे थे, और जब आप आत्मा घर से उतरकर आदि स्वरूप अर्थात देवी देवता बने, लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, उनके साथ राज्य करते थे, तो जब आप देवी देवता थे तब आप आत्मा कैसी थी? चले जाओ सतयुगी दुनिया में, न जाने कितनी बार आप सतयुगी दुनिया में गए हैं, अनगिनत बार। अभी संकल्प से पहुंचो वहां और अपने को स्थित कर दो, मुझ आत्मा ने अभी देवताई चोला धारण किया हुआ है, क्या नशा महसूस होगा, क्या खुमारी महसूस होगी, क्या सुख महसूस होगा, उस स्वरूप में टिक करके देखो कि जब हमारी सतयुगी राजधानी होगी कितना सुखमय होगी, हम कैसे राज सिंहासन पर बैठेंगे, कैसे हमारा राज दरबार लगेगा, सब के सब देवी देवताएं ही होंगे, सारी प्रकृति सतो प्रधान होगी, कंचन काया होगी। ऐसे सतयुगी दुनिया में चले जाओ, आप देखो जितना वो संस्कार अनुभव हुआ ये पुराना संस्कार जाएगा, अपनी चीज मिल गई, जो महान है श्रेष्ठ है, तो दूसरे की खराब चीज रखकर क्या करेंगे, वो तो जब अपनी चीज नहीं है तब दूसरे की चीज अर्थात रावण की चीज को अपना माना हुआ है, लेकिन जब अपनी चीज मिल जाएगी असली चीज तो स्वतः चली जाएगी। तीसरी बात, दृढ़ संकल्प हो कि मुझे संस्कार परिवर्तन करना ही है, क्योंकि जब ये संकल्प करते हो करना ही है तो परीक्षाएं आना शुरू हो जाती, विघ्न आना शुरू हो जाते, लेकिन दृढ़ता सफलता की चाबी है। क्यों? दृढ़ता में भगवान की मदद है। जब बाबा देखता है कि ये बच्चा दिल से चेंज करना चाहता है और दृढ़ संकल्प रखा है तो बाबा भी सोचता है लाओ हजारों गुना मदद कर दे, और मदद के लिए बाबा का हाथ बढ़ जाता है। जब कोई बच्चा दृढ़ता रखता ही नहीं है, मुझे करना नहीं, जो होना है जो हो जाएगा, तो बाबा किनारा कर लेता है। तो दृढ़ता रखो तो मदद भगवान की अवश्य मिलेगी, और बाबा की मदद आपके संस्कार को चेंज कर देगी। आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, लेकिन बाबा की मदद अवश्य कर देगी। ठीक है, बात समझ में आई है? अच्छा, चौथी बात क्या बताई थी जी? सोमान में, अच्छा नोट किया हुआ है। चौथी बात है, सारा दिन सोमान में रहो, सोमान में रहकर कर्म करो। सोमान संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति बोल सब परिवर्तन कर देता है। किसी भी सोमान में रहो, चाहे यही साधारण शब्द है लेकिन सोमान महान है। मैं ब्रह्मा कुमार हूं, ये तो कॉमन याद है, लेकिन ब्रह्मा कुमार हूं इस स्मृति में रहने से आपका संकल्प बोल कर्म सब चेंज हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा था, ब्रह्मा बाबा सदा सोमान में रहता था। कौन सा सोमान? कि मैं प्रजा पिता ब्रह्मा हूं, इस सोमान में सदा रहता था कि मैं प्रजा पिता हूं, सारी सृष्टि का पिता हूं। तो पिता का सोमान, मैं प्रजा पिता हूं, ये सोमान बाबा की दृष्टि वृत्ति स्मृति स्थिति सब चेंज कर दिया। जिसका प्रूफ अपनी पत्नी को जसोदा बेटी कहता था, पत्नी को जसोदा बेटी, कोई भी धर्म पिता अपनी पत्नी को बेटी नहीं मान पाया है। मां माना होगा, बहन माना होगा, लेकिन बेटी, सब कुछ बाबा का चेंज। और उसका रिजल्ट सामने वाली आत्मा का, जसोदा मैया का, वो भी बाबा को बाबा कहती थी। इतना समय पत्नी का संबंध, इतना समय रहते हुए भी सब कुछ भूल गया, मेरा बाप है, ये भावना इमर्ज हो गई कि किस आधार से? सोमान से। शुरू शुरू में जब बहने आई इस संस्था में, दादियां जो आज हैं, तब तो छोटी छोटी कन्याएं थी, तब बाबा ने इनको सोमान दिलाया। याद करो दो बातें, एक तो ये सोमान था, उल्टा था लेकिन बहुत महान बना दिया, कि जैसे गधा का बच्चा गधा होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, वैसे भगवान का बच्चा भगवान हूं। तो हर एक ये समझता था मैं भगवान हूं। छोटे छोटे तो बच्चे थे, और वो नशा चढ़ गया। उस नशे के कारण सारी बातें बदल गई। फिर भी भान रहता था मैं स्त्री हूं, कन्या हूं। बाबा ने उसको चेंज कराने के लिए सबको सोमान दिया कि हम चतुर्भुज हैं, ना नारी है ना पुरुष है, चतुर्भुज हैं, नारी भी है पुरुष भी है। तो चतुर्भुज का अभ्यास करें, जैसे विष्णु चतुर्भुज है, ऐसे चतुर्भुज का अभ्यास करें। इस अभ्यास के कारण उनको जो नारी तन का था कि डरपोक होती है, कमजोर होती है, वो सब हट गया और शिव शक्ति बन गई, शेरणी बन गई। तो भिन्न भिन्न सोमान में रहो। अगर आप इसी सोमान में स्वयं को रखा, मान लो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की स्मृति से सारी सृष्टि, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, आपके भाई या बहन हो गए। सारी सृष्टि, चाहे लौकिक है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, कोई भी है, बहन या भाई हो गए, तो जो अपनी दृष्टि चंचल होती है वो खत्म हो जाएगी। और इस भान से कि मेरे भाई या बहने हैं, बहुत मीठा संबंध है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, मिठास आ जाएगा, क्योंकि भाई बहन की अनुभूति सिर्फ भाई बहन से नहीं होगी, क्योंकि भाई बहन की अनुभूति ब्रह्मा बाप की याद के आधार से होगी कि यह सब सृष्टि की आत्माएं ब्रह्मा की संतान हैं, मेरी बहने हैं, मेरे भाई हैं। ब्रह्मा की याद रहेगी। अगर ब्रह्मा की याद है तो ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? वो हमारा कर्तव्य है, वो याद है। अगर ब्रह्मा की याद है तो यज्ञ की याद है। यज्ञ की याद है तो यज्ञ में हमें दधीची मिसल हड्डी स्वाहा करनी है, ये भी याद रहेगा। यज्ञ को हमें संभालना है, ये भी याद रहेगा। एक दूसरे से लिंक जुटा हुआ है। तो सारा दिन सोमान में रहो। हम सोमान में नहीं रहते। आप जिस चीज को ज्यादा सोचोगे वही संस्कार बनेगा, ये तो पक्की बात है। आप खुद अपने से चेक करके देखो कि सारा दिन हम देह भान में रहते हैं या आत्म भान में या सोमान में रहते। देह अभिमान नहीं कह रहा हूं, देह भान कह रहा हूं। देह भान और देह अभिमान में अंतर है। देह अभिमान अर्थात पांच विकारों के बस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देह भान अर्थात भान, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, बच्चा हूं, राजा हूं, गरीब हूं, ये देह का भान। तो सारा दिन अगर अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो देह का भान रहता है, और देह के भान के बस आपके संकल्प चलते हैं, कर्म कर रहे हैं। अगर देह भान में हैं और कर्म कर रहे हैं तो आपके संकल्प साकारी दुनिया के ही चल रहे होंगे, चाहे यज्ञ का ही, अर्थात इससे उपराम नहीं होंगे। और जब तक आत्मक स्वरूप में नहीं टिकोगे तब तक संस्कार बदली नहीं होंगे। देह भान में रहने से देह का ही संस्कार पक्का होगा, आत्म भान में रहने से आत्मा का अर्थात दिव्य संस्कार पक्का होगा। तो इसलिए सारा दिन कोई भी कोई सोमान में रहो, मैं भगवान के नैनों का नूर हूं। सोचो नूर की विशेषता क्या होती है, उसमें रहो। मैं भगवान का राइट हैंड हूं, मैं भगवान का अनन्य बच्चा हूं, मैं मास्टर भगवान हूं। किसी भी सोमान में स्वयं को स्थित रखो। शिव शक्ति हूं, पांडव सेना हूं, जितनी बाबा ने टाइटल दिए हैं सब आपके सोमान है। पांचवी बात है, अमृत बेला पावरफुल हो। यही एक बता के खत्म करेंगे। अमृत बेला पावरफुल हो, क्योंकि अमृत बेले का आधार सारे दिन पर पड़ता है। जैसा अमृत बेला आपकी स्थिति होगी वैसे सारे दिन स्वतः ही चलेगा। जैसे देखो, आप सबको अनुभव होगा कि जिस दिन सुबह योग आपका अच्छा लग गया, अच्छा अनुभव हो गया, उस दिन मुरली सुनने में भी मजा आता है। अगर उस दिन कोई कुछ थोड़ा बहुत बोलता है तो फीलिंग नहीं आती है, ऑटोमेटिक सहन हो जाता है, मन शांत स्वतः रहता है, बीच बीच में मन बाबा की तरफ अपने आप ही जाता रहता है, अनुभव होगा। तो अगर अमृत बेला आपका पावरफुल है तो सारा दिन स्वतः ही ठीक चलेगा। अमृत बेले को कहा ही गया है अमर बनने की बेला। किससे अमर? माया से अमर बनने की बेला। अगर उस समय अमर बन गए तो सारा दिन माया मूर्छित रहेगी। अगर अमृत बेले पावरफुल नहीं बन पाए, अमर नहीं बन पाए, सुबह ही मूर्छित होते रहे, तो फिर तो माया आपके ऊपर राज्य करेगी, क्योंकि सुबह का बहुत अटेंशन देना है। अमृत बेले ही आप भगवान से जो चाहे सो ले सकते हो, सारा दिन तो मुश्किल होता है, लेकिन अमृत बेले सहज है। इसलिए अमृत बेले को आप पावरफुल बनाओ, और पावरफुल आपका तब बनेगा जब शाम को चार्ट दे करके बाबा की याद में सोओगे। तब बिना चार्ट दिए अगर सो गए, बिना बाबा की याद के सोए, तो सुबह उठते ही अगले दिन की बातें याद आती रहेंगी। आप कितना कोशिश करोगे सब कुछ भूलकर एक बाप में स्थित हो जाएं, नहीं हो पाओगे। जैसे टिकने की कोशिश करोगे वो पिछले वाली बात याद आ जाएगी। चार्ट देना अर्थात सारे दिन का हिसाब किताब जलाना। अगर चार्ट नहीं दिया तो कर्म का कर्जा रह जाता है, और कोई भी कर्जदार आपको मजे से नहीं देखना चाहता है। कर्जदार यही कहेगा पहले मेरा कर्जा दो फिर मौज करना। तो वो कर्जा आपको भगवान से मौज मनाने नहीं देगा, रोकेगा, बार बार रोकेगा। इसलिए शाम को चार्ट दो, और चार्ट दे करके कुछ गलती हुई हो तो माफी लो, अगले दिन के लिए भगवान से प्रेरणा लो कि क्या करें। तो अगर प्रेरणा लेकर और याद में सोएंगे तो सोकर उठते ही वही बात याद आएगी जो प्रेरणा लेकर सोए, और भगवान की प्रेरणा मिली है। इसलिए सुबह उठते ही जैसे वो संकल्प याद आया, बाबा याद आया, बाबा ने कहा था, बाबा की शक्ति शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, बाबा की मदद मिलना शुरू हो जाएगी, बाबा के प्यार का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आपका चेहरा खिल जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अमृत पहला पावरफुल करो, ठीक है। बाकी बचा है 360 में बता देते हैं, ईश्वरीय संघ का रंग हो, क्योंकि संघ का रंग अवश्य लगता है। संघ का रंग बाबा मुरली में कई बार कहता है, देखो संघ के रंग का एक एग्जाम्पल है, हम कई बार बता चुके हैं कि संघ का रंग कितना प्रभाव डालता है। बरसात का जो पानी होता है, उस बरसात के पानी का एक नक्षत्र होता है जिसको स्वाति नक्षत्र कहते हैं, उसमें जब बरसात होती है तो उस नक्षत्र में बरसात हुए का पानी अगर घास पे गिरता है तो सुबह ओस बन जाता है, घास का संग मिलने से ओस बनता है, और उसी स्वाति नक्षत्र का पानी अगर सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है। पानी वही है, जैसा संग वैसा बनता जा रहा है, और उसी स्वाति नक्षत्र का पानी अगर सांप के मुंह में पड़ता है तो जहर बन जाता है। पानी वही है, संग का रंग देखो, और वही स्वाति नक्षत्र का पानी अगर बांस पे गिरता है, बांस मतलब जिससे अर्थी उठाते हैं, उस बांस पे गिरता है तो बंस लोचन नामक दवा बनती है जिससे कई बीमारियां ठीक होती। तो जैसा पानी को संग मिला वैसे बन गया, ऐसे आत्मा अगर परमात्मा का संग पाएगी तो क्या होगा, परमात्मा के संग का रंग आत्मा को परमात्मा के समान बना देगी। जो परमात्मा के संस्कार सो आपके संस्कार स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
जब भी होते अकेले पार देखी आती एक किरण अनदेखी आती राह दिखा कर जाती है भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी